نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير. سورة بقرة آیت نمبر 234 سے ہماری تفسیر شروع ہوگی. تھوڑا سا پیچھے سے جوڑ دوں کہ ابھی تک ہم نے طلاق اور عدت کی باتیں کی ہیں, اب یہاں اس ایک آیت میں بیوگی کی عدت کی بات ہوگی. یعنی شوہر اور بیوی کی جدائی کی صورتوں میں ایک جدائی تھی طلاق, اس کی مختلف صورتیں خلع اور ایلا طلاق, پھر اس کی مختلف قسمیں, ہم کئی دن سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہاں جدائی کی دوسری قسم جو اللہ کا حکم ہے, یعنی شوہر کی موت. یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کا نکاح کرتے ہیں یا نکاح کی شرائط میں ایک شرط کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اب گھر بسانا ہے اور یہ گھر اب بسے گا, یا تو موت دونوں کو جدا کرتی ہے یا طلاق. بڑا سینٹیمنٹل سا ایشو ہے. ہندو دھرم میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ اٹوٹ بندھن ہے. خیر وہاں تو کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہیں دوسرے مذاہب کی طرح, جیسے کرسچینٹی میں کچھ اور فارمز ہیں, جیوزم میں کچھ اور ہیں, لیکن اسلام نے اس بندھن کو اٹوٹ تو اس طرح نہیں کہا, کیونکہ ہر رشتہ اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے. جدائی جو موت کی صورت میں ہوتی ہے نا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شوہر پہلے فوت ہو جائے, اور دوسرا ہے کہ بیوی پہلے فوت ہو جائے. تیسری بھی پاسیبل ہے, ساتھ ہی فوت ہو جائے, دونوں چیزیں ممکن ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آیت 234 میں ہمیں اس بات کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے کہ اگر ایک عورت کی زندگی میں اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. سن لیں پھر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ بتائیں اس کے بعد کیا ہے, اور بیوی مر جائے تو کیا ہوتا ہے, اور دونوں ساتھ مر جائے. اگر آپ کا دل چاہے گا پوچھئے گا, پھر میں جواب بھی دوں گی. لیکن یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کو محسوس کریں کہ اس نے عورت کو کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن عورتوں کا دفاع کرتا ہوا دکھتا ہے. تو بہرحال آئیے ذرا ان لفظوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, پہلے پوری آیت مفہوم کے ساتھ, پھر الفاظ اور پھر وضاحت. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں. مرتا خود سے کوئی نہیں ہے, اس لیے یتوفون آیا ہے, کیونکہ یہ نہیں کہا گیا جو مر جائیں, کیونکہ مرنے کو کہا جائے تو کوئی نہیں مرے گا, مجہول ہے. یعنی کہا گیا کہ جب اللہ کا حکم آئے اور کسی کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے پھر کیا ہوگا, اور یہ صورت کون سی ہوگی. منکم سے مراد مسلمان مرد. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں. یعنی ایک مرد کا جب انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت اس کی بیوی موجود ہو. ازواجن کیوں کہا, زوج کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ پیچھے منکم جمع کی ہے. یہ جملے بس لکھ لیں, سمجھ بھی نہیں آتے تو لکھ لیں. چونکہ بہت سارے مردوں کی بات ہے اس لیے ازواجن بھی جمع کہا گیا. یعنی یہ حکم صرف ایک مرد کے لیے نہیں ہے, سارے مردوں کے لیے ایک معنی. دوسرا, اگر اس کو آپ والذین یتوفون منکم کو آپ یوں کہہ لیں کہ تم میں سے جو بھی کوئی مرے تو واحد بنے گا نا, تو پھر یذرون ازواجن کیوں آیا؟ تو اس کا جواب کہ ایک مسلمان مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی اپنی بیویاں ایک سے زائد تھیں, تو لہٰذا یہاں پھر دونوں ہی باتیں موجود ہیں. پھر ازواجن کا لفظ کیوں آیا ہے, بولاد کا کیوں معنی نہیں آیا؟ یہ بھی سوال ہے, ایک کوشچن ہے نا. یہ بیوی کے لیے دو لفظ ہے, شوہر کے لیے دو, ایک بال ہے ایک ازواج ہے. تو فرق یاد رکھیے جو پیچھے پڑا تھا, ازواج میں ہر قسم کی بیوی, مدخولہ اور غیر مدخولہ, رخصتی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر یہاں آ جاتا والذین یتوفون منکم ویذرون بولات تو یہ حکم سمٹ جاتا, صرف ان بیویوں کی بات ہوتی جن کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو چکا. تو لفظ ازواج مور وائڈ ہے, کھلا ہے, جس کی روح میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. خیر کیا پتہ چلا کہ جب تم میں سے وہ مرد جو کہ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں, اب وہ بیویاں کیا کریں گی؟ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, تو وہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. پیچھے یَتَرَبَّصْ کا لفظ آپ نے پڑھا تھا, تربص ربصہ سے, کسی چیز کا انتظار جس کے بعد خوشی بھی مل سکتی ہے, غم بھی مل سکتا ہے, तरबुस मुतजलजल होने को भी कहते हैं। यहाँ इंतज़ार करने के बजाय वही लफ्ज़ रखा गया क्योंकि इद्दत के बाद एक औरत के साथ क्या हालात होते हैं वो नहीं उसको पता होते। बाज़ दफ़ा इद्दत के बाद दोबारा शादियाँ हो जाती हैं, हालात पहले से अच्छे हो जाते हैं, पहले शोहर के साथ ज़िंदगी बहुत ही कसम पुरसी में गुजर रही होती है लेकिन बाद में दोबारा बहुत अच्छी जगह होती है। और बाज़ जगह इससे वर्स भी होता है, शोहर ने बीवी को बहुत लाड से रखा होता है लेकिन दूसरे जगह जाकर उसकी हो सकता है वो हौसला अफजाई ना की जाए। तो लिहाजा तरबुस का लफ्ज यहाँ बहुत ही फिट होता है। बेअनफुसिहिन्ना अपने नफ्सों के साथ, यानी खुद को रोकेंगी। कितनी दिन? अरबाता अशहुर वाशरा, 4 महीने। अच्छा पीछे से कई दफा आप लफ्ज शहर देख रहे हैं, मसलन अलहज अशहुरुम मालूमात आपने पढ़ा, ठीक है? फिर आपने क्या पढ़ा पीछे और बोलिए? शहर रमजान वाहिद पढ़ा। फिर सूरह तौबा की आयत आती है इन इद्दत शहूर इन अल्लाह। तो ये सब क्या खेल है? लिखिएगा, शहर कहते हैं एक महीने को, ये जो हम शहर कहते हैं उर्दू में ये उसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। शहर एक महीना। इस शहर की ना अरबी में दो जमे हैं। तो मसलन जैसे आप देखिए कि आप यूं कह लीजिए कि एक ही चीज के आगे वाउनून लगा दें तो जमा बन जाता है ना, राइट? और बाज दफा ऐसा नहीं, जैसे मस्जिद है तो मसाजिद, तो उसको तोड़ दिया ना तो ये जमा ब्रोकन होती है। अब लिख के देखिए, मस्जिद के अंदर अलिफ आया है तो ये टूट गई है, इसको कहते हैं ब्रोकन मुकस्सर। ये दो समझ आ गई? अब लफ्ज लिखिए शहर एक महीना। अच्छा आपने शहर से दूसरा लफ्ज पढ़ा अलहज अशहर, यहां भी अशहर है। ये अशहर क्या है? ये जमा किल्लत है, यानी जो जमा मुकस्सर होती है ना उसमें कई दफा जमा किल्लत के थोड़े के लिए। और आगे आप पढ़ते इन इद्दत शहूर 12, वो 12 महीनों के लिए आता है। तो जब 12 महीनों के लिए लफ्ज शहर आएगा ना, 3 से ज़ायद, तो शहूर कहेंगे। अब देखिए जरा, हल हज अशहर मालूमात, हज के कितने महीने थे? 3। ज़िलक़ाद ज़िलहज मुहर्रम, तो 3 कम है ना, 3 से कम थे ये 3, तो वहां क्या आया? अशहर। अब यहां देखिए, अजवाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अरबअत अशहर, अशहर क्यों आया? क्योंकि 3-4 के करीब, यानी 4 माह 10 दिन थे। मैं दोबारा इस आयत को अगर ऐसे पढ़ दूं, वयज़रून अजवाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अरबअत अशहर, तो गलत होगा कि ठीक होगा? गलत होगा। कभी आपने गौर किया कभी कि ये शहूर शहर अशहर ये फलां ये सारे फ़र्क है? अरबों को पता लग जाते हैं, हमें नहीं पता चलते। हमारी अपनी ज़ुबान में जमा वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ अरबअत अशहर क्यों आया? कि जमा किल्लत, यानी थोड़े से लफ्ज कहने हो ना, 2-3-4 इस ओके अशहर। बट जब कहा जाता है इन इद्दत शहूर इन अल्लाह इसना, तो 12 तो किल्लत नहीं बल्कि खुली जमा है। बहरहाल लेकिन यहाँ क्या पता चला? 12 अरबाता अशहरिन व अशरा। अब आपको मैं थोड़ा सा घुमाना चाहती हूँ ताकि आपकी नींद भी खुले। अरबातन का लफ्ज खाली पड़े तो क्या होगा? 4। और अशरा को खाली पड़े तो 4 महीने, अशरा 10, ऐसी है ना? तो अरबातन तो ता के साथ आया है मुअन्नस में। अब ये एक और बात समझे, ग्रामर की है, अरबी जुबान में गिनती मुजक्कर मुअन्नस भी होती है। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब से 1 से 1 ही नहीं है, 2 से 2 ही नहीं है, है ना? मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए 1 चेयर 1 टेबल 1 बॉय 1 गर्ल, पर अरबी जुबान में मुजक्कर और मुअन्नस होता है। जैसे यहाँ अरबातन अगर आप देखें ना, अरबाता तो मुअन्नस की लफ्ज आए हैं लेकिन आगे अशरा 10 के हैं। अशरा अगर अलिफ के साथ है ना यहाँ, लेकिन अगर ते गोल ता के साथ तो मुअन्नस होगा। यानी ये पूरी इसम की जो किस्म है, इसम की जमा बले हाजे अदद, तो आप देखें। और इसमें फिर क्या होता है, एक चीज़ होती है अदद और एक होता है मादूद। एक वो चीज़ जो गिन रहे हैं, 4 क्या चेयर्स, तो 4 क्या है अदद, तो चेयर्स क्या है मादूद जिसको गिना जाता है। तो ये आपस में अपोजिट होते हैं, बस अभी इतना काफ़ी आपके लिए। लेकिन यहाँ अरबा ताशहरिन व शाहरा 4 महीने और 10 दिन है। पीछे इद्दत मुतल्लिका औरत की कितनी बयान हुई? 3 हैज, राइट, या 3 तोहर थी। यहाँ बेवा औरत की 4 माह 10 दिन हो गई। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फैसा बलग ना चला हुन्ना, फिर जब वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत तक, मुराद क्या है? इद्दत गुजार ले। फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर गुना नहीं है। अब यहां अलैकुम कौन है? औरत के वाली वारस, माँ बाप, ससुराल। शौहर तो फौत हो गया, अब ससुर है उस घर में, सास भी हो सकती हैं, बड़े कोई नाना ससुर भी हो सकते हैं, अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, यानी बड़े लोग। अब उन पे कोई गुनाह नहीं है। किस बात का? फीमा, इस मामले में। फालना, वो करें। फाला क्या है? उसे एक मर्द ने किया, तो फालना उसे एक औरत ने किया। फीमेल के लिए ये नून है, ये लिखिए, ये जो फाला के बाद नून है ना, ये नून निस्वा है, निस्वानियत का नून है, तानीस का नून है, मोनस का नून है। चलिए कोई एक लफ्ज लिख लें इसमें। फी अनफुसी हिन्ना, अपने बारे में, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। मुराद क्या है कि इद्दत गुजर चुकने के बाद अब वो औरतें आजाद हैं, जहां मुनासिब समझें अपना निकाह कर सकती हैं। अब कोई उनको रोक नहीं सकता कि हमारे घर की इज्जत है बाहर ना जाए, हमारी नाक कट जाएगी, ये बेवा होकर सब्र से नहीं बैठ सकी, इससे रहा नहीं गया, इसकी ये है वो है दिस दैट। अब तुम्हारा उस पर कोई इख्तियार नहीं कि उसको रोको। वल्लाह बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। ये आयत बात में नाजिल हुई है, यानी ये आयत इस्लाम की एक अमेंडमेंट है। अभी आज ही के सबक में आगे हम पढ़ेंगे। दौरे जाहिलियत में औरत का जब शौहर मर जाता था तो उसकी इद्दत एक साल होती थी। इतना ज्यादा उसके साथ जुल्म होता था कि ना उसको नहाने की इजाजत, ना साफ सुथरा रहने की इजाजत। उसको घर में बंद कर देते, उसको भू पड़ जाती, कीड़े चल पड़ते बाजोकात। वो औरत एक किस्म की जानवर बन के जीती थी, मनहूस समझते थे उस औरत को, कहते थे इसकी वजह से इसका शौहर मर गया या जो भी हुआ, ये मनहूस औरत हो गई। एक साल के बाद अपने कस्टम, रिवाज, रस्म, जिसको आप हमारे हिसाब से भी, बाज लोग कहते थे हर खानदान के एक रिवाज होते हैं, फिर उसकी एक सेलिब्रेशन करते थे। परिंदा देते उसको, मुख्तलिफ परिंदे, और उसको कहते कैसे अपने ना ऐसे जैसे स्किन है ना, इसके साथ मलो, ऐसे मल के इस परिंदे को फेंक दो, जैसे लोग ये नछावर करना और जो ऐसी बातें। कहते हैं कि उस औरत के ताफुन और बू की वजह से वो परिंदा मर जाता था, वो इतनी गंदी हो चुकी होती थी। फिर वो उसको फेंकती, फिर आज भी आपने देखा होगा पीछे मेंगनियां फेंकना, वो जानवरों की मेंगनियां फेंकती, यानी कुछ इस किस्म के काम कर करा के वो इद्दत से एक किस्म की निकलती थी। ये औरत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म था, इस्लाम ने इसको कम कर दिया और बता दिया कि एक औरत अपने मर्द के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा इंतजार करेगी तो 4 महीने और 10 दिन करेगी, और इसके बाद फिर वो अपने मामले में कोई भी फैसला कर ले। मसलन वो शादी कर ले दूसरी जगह, करनी चाहिए, उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को उसका साथ देना चाहिए। दूसरी बात है वो ससुराल को छोड़कर मैके में आ जाए, अगर उधर कोई महरम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी इज्जत को खतरा है तो भी ठीक है। वो किसी तीसरी जगह अलग रहना चाहती है तो भी ठीक है, क्योंकि बेवा औरत जो बच्चों वाली है वो जहां दीदा औरत होती है उसको अपने नफे नुकसान का पता होता है। लेकिन याद रखिए कि ऐसी औरत भी बगैर वली के निकाह नहीं करेगी, उसको फिर अपना वली बनाना पड़ेगा। बाज दफा अपना बेटा वली बन जाता है, अगर बच्चों में जवान बेटा है तो वो बेटा कहता है कि अम्मा ठीक है आपकी शादी करें, आप करें, मैं आपका वली बनूंगा। बाप बन सकते हैं जो भी हालात, और अमूमन इस उम्र में अगर देखा जाए बुढ़ापे में जब शौहर की डेथ होती है तो अपने बाप बाज दफा नहीं भी होते, तो ये सब सर्कमस्टांसिस के साथ है। और ऐसी औरत को थोड़ी सी आजादी एक कुंवारी और एक यंग लड़की की निस्बत ज्यादा दी जाती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों? या तरबसना में किस चीज का इंतजार है? पहला तो ये हुक्म लिखिए कि इंतजार किस किस का, किस में क्या नहीं कर सकती औरत, तो लिखिएगा 3 चीजें हैं। नंबर 1, दूसरा निकाह नहीं कर सकती, अगली आयत में हम इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत पढ़ेंगे। दूसरी बात, ऐसी औरत जीनत नहीं कर सकती, हत्ता कि एक औरत ने अपनी बेटी की बेवगी के दौरान सुरमा डालने की इजाजत 1 से ज्यादा बार आपसे मांगी कि मेरी बेटी की आंखें खराब हैं, क्या वो सुरमा डाल ले, तो आपने कहा नहीं डाल सकती, क्योंकि सुरमे से आंखों में खूबसूरती आ जाती है। फिर इसी तरह से औरत बिला वजह सफर नहीं कर सकती, जिस घर में शौहर की वफात हुई है आम तौर पे औरत को उसी घर में रहना चाहिए, इल्ला ये कि कोई एक्सेप्शन है, वहां है नहीं, सफर में थी, परदेश में थी, अकेले मियां बीवी रहते थे, अब उस औरत का कोई है ही नहीं टेक केयर, तो फिर मूव कर जाए तो अलग बात है, और सफर से मुराद ये कि रात अपने घर में गुजारेगी। क्या कर सकती है औरत इद्दत के दौरान? अपने रोजमर्रा के मामूलात को पूरा कर सकती है। अगर जुमे के लिए जाती थी, जेब व जीनत को छुपा कर जैसे एक बाहया बापरदा औरत जाती है, वो भी जा सकती है। पढ़ने पढ़ाने का दरसो तदरीस का कोई काम था, कर सकती है। बहुत बड़ी मजबूरी है, जैसे एक औरत ने आकर पूछा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब मेरा कोई बच्चों को पालने वाला नहीं है, खेतों में काम करती थी, उस दौर में औरतों की यही बातें होती थी, तो क्या मैं काम कर सकती हूँ? तो जब आपने उसके हालात देखे और बाद में आपने उसको एक्सेप्शनली इसकी इजाजत दी। लेकिन याद रखिए, जेबो जीनत नहीं कर सकती, नाक में कोका भी पहना हुआ ना तो वो भी निकलेगा, खुफिया मेकअप भी नहीं कर सकती, खुशबू नहीं लगा सकती। अब एक औरत किसी ऑफिस में काम करती है और आप कहते हैं मियाँ की डेथ हो गई, अब उसको उसी रंग रूप में हाल हुलिये में जाना जैसे पहले जाती थी, इसकी फिर इजाजत नहीं होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि उम्मे अतिया कहती हैं, सही बुखारी की ये रिवायत है, कि बेवा औरत ना सुरमा लगाए, ना रंगा हुआ कपड़ा पहने, ना खुशबू इस्तेमाल करे। ये बुखारी की रिवायत है। अब रंगा हुआ कपड़े से क्या मुराद है? क्या प्रिंटेड कपड़े नहीं पहन सकती? मैरून रंग है फूलों का, कोई कपड़ों में प्रिंटेड कपड़े, उसमें नीला पीला, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कर सकती है। हम सब जानते हैं कि फैंसी कपड़े कौन से होते हैं, वो कपड़े जिसको देखकर एक पार्टी ड्रेस, शादी के कपड़े, चमकदार कपड़ों का एहसास हो, वो नहीं पहन सकती। अदरवाइज लीलन, कॉटन, सूती, इधर उधर के जो कपड़े हैं वो औरत इससे पहन सकती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर औरत बेवा हो और प्रेग्नेंट भी हो तो इद्दत कितनी होगी? सेम वही जो पहले रूल था, वजह हमल, बच्चे के पैदा होने तक। हमारी फैमिली में एक बिल्कुल यंग बच्ची, उसकी शौहर की डेथ हुई थी शादी के साथ 2-2.5 साल बाद ही, बिल्कुल यंग लड़का था, बच्ची भी यंग थी और वो प्रेग्नेंट थी, और उसके हस्बैंड की कुछ महीने की बीमारी चली, फिर उसकी डेथ हो गई। तो उस वक्त वो 8 मंथ में थी, तो फिर उसके एक माह के अंदर या कुछ दिन के बाद ही गालिबन बच्ची पैदा हुई, तो फिर उसकी इद्दत खत्म हो गई थी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो सब कुछ हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि वली को जो ये बात यहां दी गई, इससे भी फिर आप समझिए, पिछले सबक में भी ये बात हुई थी कि एक औरत की जिंदगी में वली की कितनी अहमियत है। अच्छा, वली किसी औरत को मशवरा दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो उसको अपनी मर्जी से मजबूर नहीं कर सकता किसी चीज से। खैर, अब ये बात आगे चलेगी अगली आयत में, साथ ही लें तो इंशाल्लाह आप इसको ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि जब भी अल्लाह का कोई हुक्म पड़े ना, आपको मुझे उसकी हिकमत समझ आए या ना आए, कह दें कि रब जो आखे सच आखे। बहुत सारी तावीलें लोग मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये दी ली भी जा सकती हैं। हम खुद भी आपको बता देते हैं बेवगी की इद्दत 4 माह 10 दिन की क्यों है, तलाक की इद्दत इतनी क्यों है, फिर उसमें प्रेगनेंसी की क्या, उसकी 101 रीजन हमें पता चल सकती हैं। बट एक मुसलमान होने के नाते मेरा आपका काम क्या है कि हम ये कह दें कि समय ना वताना। हमारी अकल बहुत छोटी है, हमें किसी बात की कोई बात समझ आए या ना आए, उसके लिए मैं और आप बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते कि ये कर दें और वो कर दें। और इस पूरी आयत में भी जो लफ्ज है ना, उसमें आप देख लीजिए वही लफ्ज अजली आया है जो पीछे से चल रहा है, बलगना के लफ्ज पे पिछली आयतों में बात हो गई थी, वही चीज यहां आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुभान व तआला ने जो कुछ भी बयान किया ना कुरान पाक में, वो हिकमत के साथ किया है। वो ऐसे ही नहीं है कि बस एक तुक्का लग गया और उसके बाद उसके बारे में जो कहना था कह दिया। नहीं, अब इसी का टॉपिक आगे चलेगा, फिर अगर कोई इसके अंदर मजीद बातें तो बहुत सारी हैं, और ऐसे मौजूद पे दिल भी बहुत करता है साथियों का, लेकिन हम पहले अगले हिस्से पे चलते हैं ताकि आयत को हम पूरा कर सकें।